आज का हमारा तीसरा प्लेनरी सेशन है। इस सत्र का विषय आपके सामने है, वैसे एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस ऑफ लाइफ। मैंने कहीं पढ़ा था कि सर आइजक न्यूटन ने जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले कुछ ऐसा कहा था, मैं कोट कर रहा हूं और आप उसके आधार पे इस सेशन का टोन हम सेट कर रहे हैं। आई डू नॉट नो व्हाट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड, आई डू नॉट नो व्हाट आई मे अपीयर टू द वर्ल्ड, बट टू माई सेल्फ आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक ए बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर and delivering myself in now and then, I'm sorry, and diverting myself in now and then, finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. ऐसा कहा गया है कि आइजक न्यूटन ने मरने से पहले अपने ये आखिरी वाक्य कुछ इस प्रकार के कहे थे। हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसा कहा गया है कि जाना तो यही जाना कि न जाना कुछ भी, और उसके बाद में बोलते हैं सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। हने इतना सारा खोजने का बाकी है, इतनी सारे हमारे जीवन के डायमेंशंस हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस सत्र के लिए मैं निमंत्रण देता हूं आदरणीय डॉक्टर आमोद सचान जी को। आमोद सचान जी, आप मंच पर पधारें। आप लाइफ कोच एट आमोद फाउंडेशन लखनऊ एमपी में है, और बाकी का डिटेल परिचय उनके लिए बाद में दिया जाएगा। फिर मैं मानेंद्र प्रताप सिंह जी को भी निमंत्रण देता हूं, वे भी हमारे इस सत्र के वक्ता हैं, एक्सईओ मेंबर सेक्रेटरी, और बहुत अच्छा विषय आप देखिए इसमें, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च MHRD दिल्ली। मैं आप सबको अब ख्याल आ ही गया होगा कि हर सत्र में एक छोटा सा आत्मचिंतन का सेशन रहता है, उसके लिए बीके जयंती बहन को निमंत्रण देता हूं। आप सीनियर राजयोग टीचर हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। प्रारंभ में कुछ पल हम प्रभु स्मृति में बिताएंगे। आदरणीय अंबिका दीदी आ गई हैं, उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं। आदरणीय अंबिका जी, आप सबको मालूम है, 3-4 बार उनका परिचय दिया जा चुका है, चेयरपर्सन स्पार्क, आप बेंगलुरु से आती हैं और पूरे स्पार्क के पीछे के रीढ़ की हड्डी हैं। आदरणीय दीदी को भी मैं निमंत्रण देता हूं। कुछ पल हम नई नई क्षितिजों की खोज के लिए अपने आप को भीतर की तरफ ले जाएं और उस प्रभु को याद करें जो हमारे लिए शक्ति बनकर काम करता है। प्रभु स्मृति में कुछ पल।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दूं मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। इसे अंतर संवित बोलते हैं, इसको आत्म शक्ति का को अगर हम जागृत करते हैं तो हमारी दिशाएं भी पक्की हो जाती हैं और प्राप्तियां भी निश्चित हो जाती हैं। अब मैं आदरणीय बी के शशि बहन से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारे मेहमानों को बैज और बुकेस से स्वागत करें। मंचस्थ मेहमानों को बैज और बुके पहनाएं। ये पूरी टीम मध्य प्रदेश की सतना से आई है और हर कॉन्फ्रेंस में सबका स्वागत करने की निमित्त बनती है भगवान के घर में। विषय है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस ऑफ लाइफ और उसके ऊपर अपना कीनोट एड्रेस देने के लिए हमारे बीच राजयोगिनी अंबिका बहन जी उपस्थित हैं। आपके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आपके ध्यान में आए। आपने विज्ञान में स्नातक किया है, ग्रेजुएट इन साइंस, और तीन सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बेंगलोर सब जोन की वे हेड हैं और करीब करीब 300 सेवा केंद्रों की सेवाओं को संभालती हैं। इस विंग की वो चेयरपर्सन हैं। राजयोग टीचर और स्टूडेंट लगभग 5 दशकों से अधिक समय तक के लिए हैं। वो आपने जीवन की आधी शताब्दी के करीब करीब आपने अपना जीवन इस सेवा में लगा दिया है और हर सेवा केंद्र पीपल अक्रॉस द सोसाइटी उन सबकी सेवाओं में वो निरंतर रत रहती हैं। और आपका फेवरेट विषय है योग कैसे किया जाए और योग की गहराई में कैसे जाया जाए। ऐसी हमारी आदरणीय अंबिका दीदी को मैं निमंत्रण देता हूँ, आप इस विषय पर अपना प्रकाश डालें।
ओम शांति। फिर बोलिए ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मंच और आप सब भाई बहनों को गुड मॉर्निंग के साथ नमस्ते। आज की जो विषय है ये बहुत सुंदर विषय है। अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस जो है वो क्या क्या है हम सबको मालूम भी है और वो अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज है उसको अगर हम समझ जाएंगे तो फिर हमारा सारा समस्याएं खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिजिकली मेंटली जो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके नेक्स्ट फिजिकली मेंटली सोशली इंटेलेक्चुअली एनवायरमेंटली फाइनेंशियली ऑक्यूपेशनली एंड रिलीजन ये सारी बातें हमें मालूम है ना? अगर मालूम है तो हाथ उठाइए। ये सारी चीजें नॉन डायमेंशंस है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी डायमेंशन है जिसके कारण हम इन सारी डायमेंशंस जो है ना करीब 8 डायमेंशंस और उसके और अलावा जाओ तो और भी 2, तो ये सारी डायमेंशंस की जितनी विकास जितना इनसे प्राप्तियां जिससे ये सारी बातों की सुख जो लेना है हम नहीं ले पा रहे हैं उसका कारण है द अदर डायमेंशन जिसको हम अच्छी तरह से यहाँ से जाने के पहले आप इसको सिर्फ जानकारी नहीं लेके जाइए उसको अनुभूति करके अपने साथ ले जाइए। ये पहला मेरा रिक्वेस्ट है। वो डायमेंशन है नेक्स्ट जो है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है। लाइफ डेस्टिनी जो है हम अगर उधर पहुंचना है टोटल सक्सेस ऑफ आवर लाइफ जिसमें परिपूर्ण प्राप्तियां हमें मिले जहां कोई भी कमी न रहे ऐसी प्राप्ति के लिए ऐसी जो लक्ष्य हम जीवन में रखते हैं तो वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जानना है कि नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन नेक्स्ट। तो स्पिरिचुअलिटी द सोर्स ऑफ ऑल न्यू डायमेंशंस ऑफ लाइफ। क्यों मैं कहती हूँ फिजिकली ये जो 5 तत्व है इसके कनेक्टेड 5 तत्व हम ये सब कुछ जानते हैं लेकिन रिलीजन हमने जो सारी डायमेंशंस के साथ रखा था उसमें रिलीजन को जातिवाद में ले जाने के कारण वहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिस कारण भी समस्या है। लेकिन आज की एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी ना होने के कारण लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि हम वास्तविक में स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं, क्या उसकी अनुभूति हमारी जीवन में हर कदम में हर संकल्प में होना चाहिए। ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पिरिचुअल डायमेंशंस में कई बातें ऐसी है जो हमारे हर वक्त हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। नेक्स्ट जो है स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये रिलीजन है, ये प्रेयर है, चैंटिंग है, डिवोशन है, या हम जो मानते आए हैं वो मान्यता ही स्पिरिचुअलिटी है या ये कल्चर है। लेकिन ये सारी बातें स्पिरिचुअलिटी में जब धारणा की बातें हैं तो इसमें कुछ कुछ बातें आती है, लेकिन ये सारी बातें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी विच कनेक्ट्स विद सी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, दो ही शब्दों में कहे द ह्यूमन द बॉडी द बीइंग द स्पिरिट इनसाइड द सोल इनसाइड, मेडिकली दे से इट इज अ साइके, कोई कहते रूह है, तो अनेक अनेक शब्दों में द स्पिरिट विद इन द एनर्जी विद इन द पावर विद इन द मास्टर विद इन दिस बॉडी इज मी. So learning about my own self, learning about my supreme creator, learning about my own journey, the mysterious journey, is a new dimension of spirituality. Spirituality में कई बातें हम अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार कुछ कुछ बातें हम जानते हैं, लेकिन उसमें जो इतने missing gaps है, जिस कारण जो हमारी जीवन में प्राप्तियां होना चाहिए वो नहीं हम कर पा रहे हैं. इसलिए नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? स्पिरिचुअलिटी अगर और आगे बताए कि जब मैं अपन को पहचान लिया तो आई शुड लीव विथ वन पर्पस, द फोकस्ड पर्पस, व्हाट आई शुड डू व्हाट नॉट एंड व्हाट आई शुड डू आई शुड बिकम and what are my duties here in this world. Dusra, sense of connection to self, others, nature and supreme. Isme apne saath to hum connection bhool hi gaye hain. We have forgotten that I should stay connected to myself so that I should be harmonious to my own thinking, my own judgment and my own doings. That balance, that harmony is being lost, because of which we are missing so much, where each second the pressures, the stress, the tension and you know imbalance and disharmony with others also. तो जब अपने से connection छूट गया तो अपने साथ में जो रहते हैं, परिवार हो या अपने work field हो, जहां हम जिनके साथ सारा दिन रह करके कार्य करते हैं, उनसे जुड़ना, staying connected with them means understanding them, understanding उनकी भावनाओं को समझते हुए, तो उनके कार्य को समझते हुए, उनकी विशेषता और कमियों को समझते हुए, उनको चलाना, उनके साथ चलना, ये the connection, staying connected, ये हम भूल गए हैं. नेचर के साथ इसे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, पांच तत्वों को ऐसे ग्रीड के कारण एक्सप्लॉयट कर दिया. उनके साथ पांच तत्व हमें सब कुछ दे रहा है, शरीर भी पांच तत्वों का है, जिसके अंदर मैं हर सेकेंड में स्टे कर रही हूँ. ये मेरा मंदिर है या मकान है या इंस्ट्रूमेंट समझिए, जिसके साथ मुझे कैसे चलना है, या इन पांचों तत्वों के साथ मेरा सूक्ष्म कनेक्शन, गिविंग समथिंग गुड, गुड वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन टू नेचर, दैट वी हैव फॉरगॉटन. दीज आर द थिंग्स यू नो इन स्पिरिचुअलिटी. आई कैन से दिस इज द मिसिंग, बिगेस्ट मिसिंग डायमेंशन ऑफ माय लाइफ. उतना ही नहीं, द बहुत बड़ी बात है, हम जैसे शरीर है, शरीर की माँ बाप, शरीर का संबंधी सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन व्हेन आई एम द इनर बीइंग, द मेटाफिजिकल एंटिटी, हम सब कहते हैं हम सब आए हैं, हमें जाना है. इवन शेक्सपियर टोल्ड वर्ल्ड इज अ ड्रामा, वी आर ऑल एक्टर्स हियर. एक्टर माना घर से आते हैं, गिवन पार्ट बजाते हैं, फिर जैसे आए अपने घर वापस लौटते हैं. जो जीवन की ये जो सूक्ष्म पहेली है, इसको जान करके अगर मैं अलग हूँ तो मेरा ऑरिजिन क्या है, अगर मैं हूँ तो मेरी माता पिता कौन है, तो मेरा सोर्स क्या है, तो जो जान से आई हूँ, जिससे कनेक्टेड हूँ, वो भी कम्प्लीटली भूल गए हैं. जैसे माँ बाप नहीं है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं. हमारे जीवन में भी हम जी तो रहे हैं, लेकिन आत्मा को जो सपोर्ट चाहिए, आत्मा को जो शक्तियां चाहिए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी चाहिए, वेयर आई शुड बी द रिचेस्ट द होलीएस्ट एंड द हाईएस्ट, जो मुझे हर कर्मों में माना अनुभूति जो होना चाहिए, वासना जो आनी चाहिए अपने से, वो मिसिंग है बिकॉज आई लॉस्ट माई लिंक विद द सुप्रीम. देन क्वेस्ट फॉर द होलनेस, मेरा जीवन की निजी लक्ष्य संपन्न बनने का, संपन्न प्राप्तियों में रहने का, वो भी भूल गई तो उतना ही नहीं. देन सर्च फॉर होप एंड हार्मोनी, हम सदैव ढूंढते हैं सब एक हो जाए, साथ रहे, अच्छा रहे, परिवार में भी हम समझते हैं, लेकिन वो जो दिल की संबंध में जो जुड़ा होना चाहिए, कभी कभी क्लैशस में जब बदलते हैं तो हम सोचते हैं हम कहीं से आपस में प्यार प्रेम से रहे. तो ये सारी बातें जो है ना, हमारी जीवन में स्पिरिचुअलिटी ना होने के कारण ही ये जो बातों की संपन्न अनुभूतियाँ हमारी जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं है. तो नेक्स्ट है, तो डिकोडिंग द स्पिरिचुअल डायमेंशन टू रीच एटर्नल ट्रूथ. तो कल और आज आप सब समझ गए कि मैं कौन हूँ. मैं वहाँ आप चित्र जो देख रहे हैं ना, तो वो चित्र में एक्चुअली दो चित्र है, दो फेस से शायद आप समझते हैं. एक है बाहर हम देखते हैं बाहर की दुनिया में जो बिग फेस है, उसके अंदर आप छोटी सी फेस आप देखेंगे. तो अंतर्मुखता से अगर सत्यता को समझना है, सत्यता के गहराइयों में जाना है, एंड इफ यू रियली रीच दैट न्यू डायमेंशन विच इज नॉट नोन, यू नो वी हैव टू डीकोड सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, उसके लिए मुझे अपने अंदर अंदर की दुनिया को जानने की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि मैं कौन हूँ. तो नेक्स्ट है, तो इसके लिए आपका जवाब है, आप अपने को डिस्कवर कर दिया है ना, कल से आप समझ लिए कि मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ. नेक्स्ट चित्र जो सारी भारतवासियों के ब्लड में है, वी नो दैट वी आर सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, आई एम द सोल, मैं भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूँ. नेक्स्ट जो है, लेकिन मैं सितारा मास्टर हूँ, इस बात, इस डायमेंशन पर आपको थोड़ा गहराई में अपन को अच्छी तरह से जानना, मैं नहीं कहूँगी पहचानना होगा. आपको अपनी निजी शक्तियों को पहचान करके वॉट आई हैव लास्ट द मास्टरी ओवर द सेंसेस, मास्टरी ओवर द माइंड इंटेलेक्ट एंड माई संस्कार, माई मेमोरीज, माई डूइंग्स, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, दैट लास्ट मास्टरी शुड बी टेकन बैक बाई अंडरस्टैंडिंग माई ओन सेल्फ इन ए डीपर एस्पेक्ट. दैट इज पंचेंद्र जो है ना, वो तो हमें मालूम है, आंखें, कान, मुख या सेंस ऑफ टच, ये सभी, लेकिन उससे और गहरी बात मन बुद्धि संस्कारों की जो अधीनता है. हम कहते हैं ना, कुछ कुछ हम फिर भी इंद्रियों को, स्थूल इंद्रियों को तो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन जो मन है ना, मन भागता है. मन को वश करना बहुत बड़ी बात है. व्हाट यू से, आप सभी समझते हो ना, मन को अपने काबू करना, बुद्धि को, अपने निर्णयों को. और संस्कार एक चाबी है, किसी को गुस्सा करने की संस्कार है, छोटी छोटी बातों में उसको आवेश आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाती है, वो कहते हैं व्हाट टू डू, इट इज माय हैबिट, माय नेचर, ऐसे हम कह देते हैं. लेकिन स्पिरिचुअलिटी मींस कम बैक टू माय ओन मास्टरी ओवर दी जस्ट नॉट अ सेंसेस बट ऑन माइंड इंटेलेक्ट एंड संस्कार. ये है स्पिरिचुअलिटी. हर वक्त, हर कदम में स्पिरिचुअलिटी, द न्यू डायमेंशन जो लाइफ का है, उसको मैं अच्छी तरह से जान करके, इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ माय लाइफ, इट इज अ नीड ऑफ माय लाइफ, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ ईच एंड एवरी सेकेंड, टू बी अवेयर, टू बी कनेक्टेड टू माई ओन सेल्फ. First, stabilize the consciousness that I am a point of light, source of energy, I am a power. Come back to that point, then you see, watch your thoughts. What all the thoughts are coming. Speak to yourself, self-talk. Then think that when I am the master, what I want to think, I should think, I'll do that, but not out of the box. So in that way, when the very, very big methodology, ye jo vidhi hai na, apne ko, apne man ko kabu karne ki vidhi, jo Brahma Bap ne apne jeevan mein laya, wo hai apne aap se baate karna. To have a deep concentration and to have a deep realization and experience of my own self, speak to yourself. Ye man jo hai na, ek bacche ki taraf se hoti hai. मन से बच्चा जो भी चीजें सब में हाथ डालता है, अगर माँ कहे ए, इमीडिएटली वो चुप हो जाता है. ऐसे ही हर वक्त मुझे अपने ऊपर आंख रखना, कड़ी आंख रखना, अपनी सोच पर, अपने निर्णयों पर, ये बहुत जरूरी है. व्हेन यू थिंक व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई थिंकिंग, वन सेकेंड यू विल बी बैक टू यूर कॉन्शियसनेस. You can stop your thoughts, but even to the seconds, now you can try that I am the being of light. I am a point of light. Stop your thoughts. Just visualize the light. And mind becomes so silent. Cut down the speed of thoughts to have a journey. The inner world journey will be easy. As much you withdraw when you become introvert, this is the biggest method to see myself and to stay connected with myself. Then when mind is under control, when the clarity of my thinking comes, then naturally I can understand my intellect. See, mind, intellect and sanskara is not separate from soul. Three faculties, my own thinking capacity is mind, my own judging capacity is intellect, and whatever I do, the action, the thought is translated to action, that is recorded in me, that leaves a very deep groove within me, that is the sanskara, where you have heard that chitta and ruti. Ruti means my own emotions, which as I am going on thinking, I create emotions. For example, if your boss tells something to you lovefully, you don't mind, but suddenly calling and scolding you, that second you don't feel. After going some minutes or some seconds, you will think why he said, oh, he is always like this. Always he misunderstands, always he scolds me. As you go on think, the emotions are created negatively against him. Then we think he is very bad and I don't want to see his face. All these things means Ruti is connected to my own thinking. If I don't put a stop with my judgment that whatever it is, everything is good. If that should be a nature actually, to take everything positive. If that is not there, then we go on make all negative emotions and our chitta, the storehouse of sanskaras, will be totally filled with negativity. This is the deepest dimension of my life, which I should understand. And this is a loop, you know, the mind, the intellect, mind and the emotions. Then after what I really record in myself, that will be in a chitta, and that works in three levels: conscious level, subconscious and unconscious level of our mind. And unconscious is very strong because the stored sanskaras, the stored emotions works when we are sleeping, And in sleeping, so many things come as a dream that is subconscious. But deeper aspect of chitta is unconscious mind, where, you know, I have stored from many things. So mind works in many ways, positive, negative, waste, unnecessary and necessary. You all know all these things. But when the negativity comes with pressure, then it will be, you know, like a tufan aisa aata hai, pravah aisa aata hai, jis flow mein hum beh jate hai, jis mein bol bhi ho jata, karam bhi ho jata, and sambandho mein jo clashes se sambandh bigadna, ye sari baate negativity mein kahi sare the waste and unnecessary doings bhi shamil ho jata hai. Isliye man ko kabu karne ke liye ye jo spirituality hai, spiritual knowledge kyun zaruri hai, kyunki gyan, ye jo samajh hai mujhe Paramatma Bap Brahma dwara, hamari adi madhi ant ki gyan, mana my own journey of 84 birth, he has given the clear, very clear picture about it. My origin, my innate values and my role here on the world of action, that is a karma kshetra par jo mujhe karna hai, in sab baaton ka spasht gyan hone ke karan jo bhi aapke aage baatein aati hai, isme aap negative mein bhi nahi jayenge, व्यर्थ भी नहीं सोचेंगे, अशुद्धता में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हरेक आत्मा की रोल, हरेक आत्मा की भावनाएं, उनका संस्कार, उनकी कमियां, कमजोरियां सब समझते हुए साथ साथ चलेंगे. इस तभी ये सारा जो आजकल समस्याएं है ना, ब्रेकअप ऑफ फैमिलीज और जो भी समाज में हम देख रहे हैं कुरीतियां, इन सब का कारण हमें मालूम है, अज्ञान है. तो ये जो the truth about that dimension, you know, that is lost, that spirituality, that spiritual understanding is being lost because of which everything is happening. तो इसमें ज्ञान जितना हमारी बुद्धि में बढ़ता है, ज्ञान gives the total clarity. Clarity, the clear-cut vision about everything. इसलिए बुद्धि को third eye of wisdom कहते हैं. बुद्धि के सारी क्षमताएं, judgment या परखना या कोई भी बात को परखने के बाद समझते हुए सही निर्णय लेना, right decisions in a right time is the main thing. तो ये हम सब करते हैं और उसके बाद जो संस्कार है, संस्कार में हमें अच्छी तरह से हमें समझना है. हम समझते हैं ना, मैं क्या करूं, नेचर है, क्रोध भी आता, लोभ भी आता, मोह भी आता, अभिमान भी आता, ये तो पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हम समझते हैं. लेकिन एक्चुअली नहीं, ये एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए. यहाँ ही द क्लैरिटी ऑफ दिस डायमेंशन इन माई लाइफ, द न्यूनेस इन माई लाइफ, इफ आई विश टू ब्रिंग इज आई शुड अंडरस्टैंड वॉट एम आई. In true sense, what am I? I am a soul. That is not the end. What type of soul? What quality of my soul? What are my sanskara, the quality? There, the innate and the acquired. The innate sanskaras, innate values, next jo hai. To aap samjhenge ki mera jo niji gun, niji sanskar jo hai, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ, ये सारी जो सात गुण, सात संस्कार के रूप में, दीज आर माई इनेट वैल्यूज. तो हम लोग अपने को या दुनिया को, समाज को, दूसरों को कितना जानते हैं? आप आइसबर्ग का तो समझते हैं ना, तो आइस ऊपर इतना ही दिखता है लेकिन अंदर उसका पहाड़ रहता है. ये सब मालूम है, इसलिए हम इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे. ऐसे ही हम आत्मा है समझने से वो खत्म हो गया बात, ऐसा नहीं है. वो तो बहुत शुरुआत की एक छोटी सी जवाब है, मैं शरीर नहीं आत्मा, लेकिन मेरी आत्मा की जो निजी गुण है अभी वो जैसे कि ना के बराबर है, क्योंकि वो डक गया है अक्वायर्ड क्वालिटीज और अक्वायर्ड संस्कार जो संग दोष से आई हुई है, जो शरीर का संग। मैंने समझा मैं खुद शरीर हूँ, सभी को समझा है सब शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर मैं भी आत्मा, हर एक आत्मा है, अपने अपने पार्ट बजा रहे हैं, और पार्ट के पीछे कर्म फिलॉसफी, ये जो कर्म अकर्म विकर्मों की जो फिलॉसफी है इसको हम यथार्थ रीति से समझ के चलेंगे। द डायमेंशन, द न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ इज टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम कनेक्टेड विथ एक्शन एंड द रिएक्शन। Newton's third law is not just to study, it is applicable to our life, each and every step of my action, that is whatever I am doing. So, sanskaron ko, jo hum kaam, krodh, lobh, moh, ahankar, ye jo sanskar hai, uske anusar karam kiya, us anusar hi hum, uska jo reaction, bimariyan, dukkha, shanti, depressions, worries, pressures, sambandho mein kirkiri, sambandho mein, you know, clashes, all these things are the return of our negative doings because of the acquired sanskaras. The next is, तो इसमें अभी हम इन बातों से बाहर आना चाहते हैं। मुझे अपनी समझ आ गई, मेरा जीवन की ये जो you know, unknown things, unknown dimensions of spirituality, वो समझ में आ गया, लेकिन आई वॉन्ट टू बी बैक टू माई इनेट संस्कार, इनेट वैल्यूज एंड ऑलवेज डूइंग सत्कर्म, द पुण्य कर्म। हम वही करना चाहते हैं, वही बनना चाहते हैं जो मैं थी, तो उसके लिए मुझे आई नीड द सपोर्ट सिस्टम, आई नीड द पावर्स, आई नीड टू एम्पावर माई सेल्फ। उसके लिए द सेकेंड डायमेंशन of life is to understand my creator. तो आज आप शिविर में समझ गए होंगे who is God, where is he, how is he. उसके जवाब में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मैं I am the point of light, means my father is only a point of light beyond the physical limits. तो जब मैं ही शरीर नहीं हूँ तो मैं एक शक्ति हूँ, तो मेरा creator भी एक परम शक्ति है, सुप्रीम सोल। जो भी शरीर आकार में है वो मनुष्य हो सकता या और मनुष्यों से अच्छे गुण वाले देवता हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते हैं। तो भगवान एक निराकार है, जितना हम गहराई से अपने रियलाइजेशन में आ जाएंगे सुप्रीम को समझेंगे। सुप्रीम गॉड फादर शिवा, शिवा ऐसे नहीं समझिए ब्रह्मा कुमारिया एक कम्युनिटी की कुछ करते हैं बातें, नहीं, शिवा इज ए संस्कृत वर्ड जो रूपवाचक, गुणवाचक, कर्तव्यवाचक भगवान का नाम है। हम सबका नाम शरीर पर है, भगवान का नाम वो ज्योति बिंदु, वो रूपवाचक माना वो प्रकाश है संस्कृत में। शिवा मीन्स लाइट, शिवा मीन्स बेनिफैक्टर, वो कल्याणकारी है, वो निराकार के रूप में सर्व का कल्याणकारी, और वो ह्यूमन जियोलॉजिकल ट्री का सीड है, वो वृक्षपति है, बीज स्वरूप है, ज्ञान सागर है, इसलिए उसका नाम शिवा है। गॉड शिवा इज नॉट ए शंकरा, शंकरा इज अगेन अ सटल देवता फॉर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता नमः, शिव परमात्मा नमः। दिस इज द बिगेस्ट डायमेंशन ऑफ अवर लाइफ वेयर आई हैव टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम सोर्स एंड कनेक्ट टू हिम एंड गेट माई यू नो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इट साइंटिफिकली एंड लॉजिकली सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू हु इज माई क्रिएटर, हु इज माई सुप्रीम फादर, टू हूम आई वॉज प्रेइंग, त्वमेव माताश्च पिता बंधुश्च सखा त्वमेव मम देव देवा, वॉट एवर वी आर सेइंग इट इज ही। सो दिस कनेक्शन, आई एम अ सोल, वॉट इज मेडिटेशन, अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अ मेडिटेशन टू एम्पावर माई सेल्फ, दैट इज मेडिटेशन इज नथिंग बट shifting consciousness to myself is, that is, I am the energy, metaphysical entity, withdraw from the body, then connect to the Supreme Life, draw the energy, empower yourself. That is meditation. Just saying Shiv Baba with body conscious, you can't draw the energy. अभी सूरज बाहर है, आज नहीं है, लेकिन उसके किरणें चाहिए, रूप नहीं होना चाहिए. ऐसे अगर परमात्मा से शक्तियां लेना है, हमारी बुद्धि में जो रूप कड़ा किया है ना, मैं शरीर हूँ, इसको निकालना पड़ेगा. मैं आत्मा हूँ, आई एम लाइट. वन सेकेंड यू फ्लाई बियॉन्ड, कनेक्ट टू हिम, ड्रॉ द एनर्जी, कैन कम बैक. इसके लिए हमें और स्पष्ट बात चाहिए, मेरा पिता भगवान कहाँ है, मेरा ऑरिजिन क्या है. जब हम ड्रामा कहते हैं, ड्रामा में घर से लोग आते हैं, कार्य करते हैं, चले जाते हैं, हम भी इसके पीछे आपने देखा तीन लोगों का जो आपने सुन लिया, परमात्मा निराकार वहाँ है और उससे हमें मुझे शक्तियाँ लेना है और इन शक्तियों के आधार से अपने निजी गुण और सारे प्राप्तियाँ हम कर सकते हैं. ये सारा समझते हुए अपने जीवन में हम परफेक्टली विद ऑल दी परफेक्ट हार्मोनी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और विद ऑल द सक्सेस हम चल सकते हैं. तभी ये स्पिरिचुअलिटी द यू नो द न्यू डायमेंशन को समझते हुए समाज और दुनिया में क्या होगा, हमारी जीवन, हमारी फैमिली एक हार्मोनियस स्वर्ग जैसा बनेगा. उतना ही नहीं, हम ही स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल वैल्यूज के आधार से दुनिया को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं. तो इसलिए इस डायमेंशन को आप अच्छी तरह से अनुभव करके जाना, इसकी गहराइयों में जाना और स्पष्ट करना है. मेडिटेशन ऐसा नहीं समझिए कहीं कोई चीजों पर एकाग्र कर दिया या चैंट कर दिया या नील कर दिया या अपने श्वासों पर अटेंशन रखा. जस्ट मेडिटेशन इज नॉट लिमिटेड टू दैट. मेडिटेशन इज समथिंग बियॉन्ड विच वेयर वी आर कनेक्टेड विथ एम्पावरमेंट, द परफेक्शन एंड विद ऑल द यू नो द केयर, द शेयरिंग फ्रॉम सुप्रीम फादर एंड वी आर कनेक्टेड विद द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम सुप्रीम फादर. That is meditation, means connection with relationship with Supreme Father. Thank you so much. Om Shanti.
आप सबने अपने अंदर की दिशा की ओर दीदी ने हमको ले जाने का प्रयास किया. आप गए भी होंगे, पिछले दो दिन से आपको वो सत्र भी मिल रहे होंगे. वैसे किसी भी आदमी से पूछा जाए कि दिशाएं कितनी हैं, तो सामान्य तौर पर हमको चार दिशाएं बोलते हैं. फिर और थोड़ा तान खींच तान के पूछते हैं तो बोलते हैं आठ दिशाएं हैं. फिर और भी अगर पूछा जाए तो फिर बोलते हैं दसों दिशाओं से, ऐसा बोलते हैं. अब ये दसों दिशाएं कौन सी हैं? देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊर्ध्व, ऊपर, अध, नीचे. अब ये सभी दिशाएं मुझसे दूर ले जा रही हैं. एक दिशा, ये दसों दिशाएं आउटसाइड की हैं. अब अगर एक दिशा आउटसाइड है तो उसकी ऑपोजिट कौन सी होगी? इनसाइड होगी. इनसाइड मैंने कौन सी दिशा हुई है? ग्यारहवीं दिशा हुई. और उस ग्यारहवीं दिशा में जाने का यहाँ से आप प्रयत्न कर रहे हैं और अपने आप पे उसका, उस दसों दिशाओं में जाने के लिए कोई साधन चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, वक्त लगेगा. ये ग्यारहवीं दिशा ऐसी है जहाँ आप मन चाहे तब जा सकते हैं. ऐसी दिशा दिखाने के लिए आदरणीय दीदी जी का धन्यवाद. अब मैं आदरणीय अमोल, अमोद कुमार जी सचान को निमंत्रण देता हूँ. आपका एक अल्प परिचय में देता हूँ. वे एमडी हैं, प्रोफेसर इन हेड, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में. आपने अपने कैरियर की शुरुआत वहीं से की थी और उसी संस्था में कंटिन्यूअसली एक स्थान पर रहकर उन्होंने वहां के हेड के पद तक पहुंचने की सिद्धि हासिल की है। आप फाउंडर एमडी एंड मेजर शेयर होल्डर हैं शिखर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के और उससे जुड़ी हुई अनेक चैरिटेबल ट्रस्ट की कॉलेजेस के चेयरमैन भी हैं। आपको नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हर वर्ष कम से कम 5-6 लेक्चर्स देने का चांस मिलता रहता है और वो अपना ज्ञान परोसते रहते हैं। एमडी की थीसिस और प्रोजेक्ट सुपरवाइज करते हैं। पीएचडी कैंडिडेट्स आज तक उन्होंने 4 कैंडिडेट्स को पीएचडी दिलवाई है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपने 2 कंप्लीट किए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ लेकिन इतनी हमें मालूम पड़े कि हमारे सामने जो बात कर रहा है वो किस बैकग्राउंड के साथ और किस ज्ञान के खजाने के साथ। आपने 27 पेपर और 27 प्रेजेंटेशंस दिए हैं। अनेक हॉस्पिटल्स लखनऊ में स्थापित किए हैं। 70 पब्लिकेशन आपके नाम से हैं और शेखर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर भी हैं। इससे ज़्यादा बहुत कुछ है लेकिन मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको अपनी बात रखने के लिए निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय
ओम शांति। आज मैं आपको एक डिफरेंट डायमेंशन में ले चलने का प्रयास करूंगा। हम सभी लोग इस जो ज्ञान में चल रहे हैं वो आत्मा परमात्मा और इस शरीर के बारे में चर्चा करते रहते हैं लेकिन ये आत्मा क्या है, ये आत्मा की 7 गुण और 8 शक्तियां क्या हैं, इसका परमात्मा से क्या संबंध है और ये आत्मा इस शरीर में कैसे काम करती है, इस सब को एक बार यदि हम समझ जाएं तो शायद इस ज्ञान को अपने आप में धारण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम इसी आयाम की तरफ अपने अंदर की यात्रा में आपको साइंस के माध्यम से ले चलूंगा। ऐसे बहुत से रहस्यमय चीजें आज दिखाऊंगा जो शायद जीवन में आज आप पहली बार देखेंगे। ये हम सब जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा के ये 7 गुण और ये 8 शक्तियां हैं, ये क्या हैं? ये मैं कैसे मान लूं कि ये 7 गुण ही आत्मा के गुण हैं और ये 8 शक्तियां आत्मा की शक्तियां हैं जबकि पूरा संसार इनसे विपरीत दिशा में चल रहा है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध मोह अहंकार और काम। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमको यही दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे माने कि ये मेरे गुण हैं? इसका एक सिंपल सा आंसर है, बहुत सहज आंसर है कि जब हम ये गुण धारण करते हैं तो हम इस तन से और मन से स्वस्थ रहते हैं। आज की तारीख में पूरे संसार में सभी लोग बीमार हैं। 100% पॉपुलेशन जो 800 करोड़ लोगों की आबादी है वो सभी बीमार है। कुछ तन से है, कुछ मन से है और मन से तो हम सभी हैं क्योंकि हमारे अंदर जो गुण 7 धारण करने चाहिए वो नहीं है। आज की तारीख में जब हम आत्मा की शक्ति को नापते हैं तो पाते हैं कि वो बहुत क्षीण हो चुकी है। जब भी हम कभी कोई गैजेट खरीदते हैं देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि उसके बारे में सब कुछ जाने समझे और वो कैसे ऑपरेट करता है इसको समझे। उसके एप्स बहुत से डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब जाकर के वो सारे के सारे एप्स काम करना शुरू करते हैं। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर ये शरीर है। इसका मस्तिष्क इससे बढ़िया कंप्यूटर कोई बना नहीं सकता है। आज मैं कुछ आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो प्रवाहित होती है, जो इस शरीर के एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में प्रवाहित होती है और इस पूरे शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, वह ऊर्जा ही आत्मा है और वो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है। इससे बेहतर कोई सॉफ्टवेयर हो नहीं सकता है और हमने कभी इसको जानने का प्रयास ही नहीं किया। जो कुछ हमको मिला बाहर से ज्ञान, उस ज्ञान को सिर्फ हमने ऊपरी स्तर पर समझने का प्रयास किया, अपने अंदर झांक करके हमने देखने का प्रयास ही नहीं किया। इस कारण से हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और कैसे हम काम करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने इसको एक स्पेशल नाम दिया है, सोल करी, कि ये सोल है जो आत्मा है, ये कैसे बनी है, ये कैसे काम करती है, कैसे इस शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, कैसे इसको आगे चलाती है, कैसे हमको स्वास्थ्य प्रदान करती है, इस सब को समझने की आवश्यकता है। यदि हम ये समझ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से अपने आप को ठीक रख पाएंगे। इस सोल को बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है विद ए कॉन्शियसनेस, इसके साथ एक चेतना समाहित है जो इस ऊर्जा के साथ सम्मिलित रहती है और वो चेतना और ये ऊर्जा, इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, ईईजी, ईसीजी, ईएमजी, तमाम तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और उसी के साथ साथ ये ऊर्जा जब हमारे शरीर में जाती है तो उस शरीर को जब ये संपूर्णता में होती है तो जीवंत रखती है, स्वस्थ रखती है, और जब ये इसकी पोटेंसी कम हो जाती है तो ये बीमार कर देती है। हम सभी लोग यहां आत्मा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पर विराजमान होती है और यहां के रेटिकुलर फॉर्मेशन से तीन मुख्य मुख्य साधन है जिसके माध्यम से ये पूरे शरीर में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करती है। वन इज नर्वस सिस्टम, अनदर इज हार्मोनल सिस्टम एंड थर्ड इज न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके माध्यम से ये एक एक सेल को जीवंतता देती है और जब तक ये आत्मिक शक्ति हमारी नहीं बढ़ेगी तब तक हम कभी भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। ये ज्ञान क्या है, सबसे पहले हमको समझने की आवश्यकता है ज्ञान क्या है। जितनी सूचनाएं हम ग्रहण कर रहे हैं ये सब सूचनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक है कि मैं ज्योति स्वरूप सातों आत्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध सिर्फ उस परमपिता परमात्मा के साथ है। बाकी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये एक ड्रामा है, इस ड्रामा में मैं अपना पार्ट एक हीरो के भांति मुझे निभाना है। यदि हम सफलतापूर्वक निभा लेते हैं तो मेरा ये जीवन सफल हो जाएगा और इसी जीवन काल में हमको एक साधारण मनुष्य से देवता बनना है। लेकिन हम कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, ये समझना बहुत आवश्यक है। हम शांति हमारा स्वयं का स्वभाव है, शांति हमको मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती अभी हम एक मिनट बाद बात करेंगे। तो शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, इस संसार में जगह जगह ढूंढते हैं और जहां जहां ढूंढते हैं वहां वहां अंतिम लक्ष्य के तौर पर हम अशांति पाते हैं और दुख पाते हैं। शांति की खोज में हम बाहर कभी परिस्थिति में, कभी किसी व्यक्ति में ढूंढते हैं, जब कहीं नहीं मिलता है तो नशे में चले जाते हैं। नशे में जब एडिक्शन होता है तो हम उसमें थोड़ी देर के लिए एक गफलत में पहुंच जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो शांति कहीं मिलती नहीं है, एडिक्शन अलग से हो जाता है। तो ये किसी भी तरीके से बाहर नहीं मिल सकती है, इसके लिए हमें अपने अंदर ही खोज करनी पड़ेगी। क्यों नहीं मिलती है अभी इसके बारे में बात करते हैं। प्रेम हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रॉपर्टी है, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरा परम पिता परमात्मा प्रेम का सागर है, वो इस पूरे संसार को प्रेम दे रहा है, सत्य निस्वार्थ प्रेम दे रहा है। हम अपने विकारों के कारण विकारों की मोटी मोटी लेयर्स जो हमने चारों तरफ रेजिस्टेंस की तरह ले रखी है, इस कारण से वो ईश्वर का प्रेम मेरे अंदर प्रभावित नहीं हो पा रहा है। और हमें उसके लिए उन विकारों को दूर करना है। विकारों को कैसे दूर करें, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम ही ईश्वर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इस पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट रहा, ओपेनहाइमर, जिसने इस दुनिया में पहला एटॉमिक बम बनाया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में क्या कहा, इसको जरा वीडियो प्ले कर दीजिएगा। जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि इस संसार की सर्वश्रेष्ठ पावर प्रेम है, जरा वॉल्यूम, फिर से प्ले करिएगा। ये उस व्यक्ति का संदेश है जिस व्यक्ति ने एटॉमिक बम को बनाया और उसने कहा कि इस संसार में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी ऊर्जा प्रेम है।
When I proposed the theory of relativity, very few understood me. And what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice in the world. There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe, and has not yet been identified by us. This universal force is love. When scientists looked for a unified theory of the universe, they forgot the most powerful unseen force. Love is light that enlightens those who give and receive it. Love is gravity because it makes some people feel attracted to others. Love is power, because it multiplies the best we have and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love unfolds and reveals. For love we live and die. Love is God, and God is love. This force explains everything and gives meaning to life. This is the variable that we have ignored for too long. Maybe because we are afraid of love, because it's the only energy in the universe that man has not learned to drive at will. To give visibility to love, I made a simple substitution in my most famous equation. If instead of E equals MC squared, we accept that the energy to heal the world can be obtained through love, multiplied by the speed of light squared, we arrive at the conclusion that love is the most powerful force there is.
उन्होंने कहा कि मानवता को हील करने के लिए यदि कोई पावर चाहिए, तो यदि हम लव को लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इतनी शक्ति होगी कि इस पूरी मानवता को हील कर सकती है। लेकिन लव, ये प्रेम, ये करुणा, ये दया, ये शुभ भावना, ये शुभ कामना, ये करती क्या है? जिसके साथ ये करते हैं, जिसके से करते हैं, उसके अंदर एक ऐसी मैत्री की भावना उत्पन्न होती है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन बाहर जो करता है सो करता ही है, वो मेरे अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न करता है कि मेरे को तन से और मन से पूरी तरह स्वस्थता प्रदान करता है। इसलिए ये प्रेम ही वो है जो ईश्वर की तरफ हमको पहला रास्ता दिखाता है. नेक्स्ट, आई विल नॉट गो इन टू दीज डिटेल्स. आई विल बी टॉकिंग लिटिल बिट अबाउट दी दोज थिंग्स विच आर रिलेटेड विद दी मेडिसिन एंड विच मे बी हेल्पफुल टू यू. WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन जब बनाई तो उस समय यह कहा कि इट इज नॉट अ मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ फिजिकल इमोशनल फिजिकल मेंटल इमोशनल वेलबींग. बट लास्टली दे हैव एडेड द सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एज वेल. तो जब तक हम स्पिरिचुअली अपने आप को स्वस्थ नहीं करते हैं तब तक हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं. अब मैं एक ये छोटा सा वीडियो है और दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको, इसको प्ले करिए प्लीज, इस आत्मा से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट शरीर के अंदर जाता है और जाकर के एक एक सेल में, एक एक सेल में जब प्रभावित होता है तो वो वहां पर पूरी बॉडी में एक दूसरे ऑर्गन से बात करता है. और कैसे करता है ये लाइव वीडियो है कि हम एक स्पेशल माइक्रोस्कोप के माध्यम से शरीर के अंदर चले जाते हैं और वहां का ये वीडियो है, प्लीज देखें.
अ स्पेशल लाइट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व दीज इन डिटेल. व्हाट यू कैन सी इन बिटवीन द मेश ऑफ दीज विलाई आर कैपिलरीज. Nutrients from food are absorbed by these villi and are carried throughout the entire body by our blood. Cells near the surface of the villi have been captured using a microscope. The area indicated by the line is a single cell that forms a part of the intestine. The interior of this cell is shimmering away. Now, watch as it changes. Something is about to happen. Glistening clouds of molecules burst out from the intestine cell. At a further magnification, here's what they look like.
These are all live videos. They are not artificial.
They are only 100,000th of a grain of sand in size. The message they deliver, for example, could be, food's here. These messages are telling the entire body that food has been consumed.
Please stop. Because of the shortage of time, I'm talking with a little fast. इस तरीके से हमारे शरीर की एक एक सेल उस आत्मिक शक्ति को पूरे शरीर में एक दूसरे ऑर्गन से बात करती है, एक दूसरे ऑर्गन को प्रभावित करती है. इसीलिए जब हम पूर्ण रूप से इस आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण होते हैं तो ही हम स्वस्थ रहते हैं. आज की तारीख में आत्मा की शक्ति 3% के लगभग रह गई है. 97% पावर हमारी खत्म हो चुकी है. हमारे 97% न्यूरॉन्स जहां आत्मा विराजमान रहती है वो इनर्ट पड़े हुए हैं. इसलिए उसको जागृत करने के लिए हमको अपने आप से काम करना पड़ेगा. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाली कि हम क्यों नहीं सुधर पाते हैं. हम ये जान गए, ये ज्ञान मिल गया कि हमको ये सातों गुण धारण करने हैं, आठों शक्तियां धारण करनी है, लेकिन क्यों नहीं धारण कर पाते. तो उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे माइंड में दो पार्ट है. एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड. तो जो कॉन्शियस माइंड है उसकी संख्या, उसका परसेंटेज 5-10%. बस सर 2 मिनट होगा और 2 मिनट में इसको कंक्लूड कर दूंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं शायद वो आप सब लोगों के बहुत काम की है. कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 5% है. अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड 95% है. और हमारे विचार पैदा कैसे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को थ्रू बुद्धि के माध्यम से उसको विचार देता है जो अपने आप पॉपअप होते हैं। और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, यही हमारे विचार है। और ये नए विचार जब पैदा करते हैं तो वही विचार पैदा करते हैं और कॉन्शियस माइंड एक किनारे धकेल दिया जाता है, हम अपना काम कर देते हैं, काम कर जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ व्यवहार किया, कोई गाली देता हुआ आ रहा है, तो हमारा व्यवहार तुरंत उसके प्रति वैसा ही हो जाएगा, हम अपने प्रति संयम नहीं रख पाएंगे। उसके कारण है कि हमारे न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड में मैसेज चला जाता है, एक सेकंड के 10,000वें हिस्से में। मतलब इसका यह हुआ कि एक सेकंड के अंदर वो विचार मेरे मन मस्तिष्क में हर तरफ चला जाता है और मन मस्तिष्क के माध्यम से पूरे शरीर के एक एक सेल में चला जाता है। आप देखते हैं जब क्रोध आता है तो आपकी एक एक सेल लाल हो जाती है, आप हिलने लगते हैं, पत्ते की तरह हिलने लगते हैं। ये कैसे होता है? ये इसी कारण से होता है। इसलिए इसको रोकने के लिए हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग करनी होगी। जब हम इसकी कंडीशनिंग कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। और इसके लिए हमको विलिंगली दो पावर यूज करनी पड़ती है माइंड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। अगर हम उनको जान जाए तो अपने प्रभावित कर सकते हैं। नंबर एक पावर यह है कि माइंड, एक सेकंड से रोड़ लेंगे, माइंड एट ए टाइम सिर्फ एक विचार कर सकता है, इसके पास दूसरे कोई विचार नहीं होते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि माइंड जो है एक मिनट के अंदर 25 से 40 विचार करता है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग विचार करता है। तो उस माइंड को विलिंगली विलफुली मुझे एक डायरेक्शन में लगाना होगा, उन पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लगाना होगा। और माइंड के साथ एक और क्वालिटी है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए यदि आप जो उसको क्वालिटी देंगे वो ऑटोमेटिकली उसी को अपने आप में घेर लेता है और वही बन जाता है। और ये सारे के सारे विचार ही आपको एक सफल इंसान बनाते हैं। इसलिए हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूप परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपने आप में जैसे पैदा हुए थे हम वैसे ही नहीं, हम जेनेटिकली भी चेंज हो जाते हैं, हमारी जीन्स में भी चेंजेस पैदा हो जाते हैं। यदि हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, हमारे जीन्स, हेल्दी जीन्स अप रेगुलेट हो जाते हैं, अनहेल्दी जीन्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। जो बीमारियां होती हैं उनको संपूर्ण रूप से उनको हम ठीक कर सकते हैं। मैं समझता हूं आज समय की कमी के कारण मैं इसके बारे में आगे और जो बता सकता था शायद समय नहीं है, लेकिन फिर किसी और समय बताएंगे। हमको अपने आप को पूर्ण रूप से इसी जीवन काल में परिवर्तन करना है। अनेक अन्य जन्मों को तो भूल जाइए, वर्तमान जीवन में स्वस्थ भी रहना है, खुश भी रहना है, उसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल। पूरे दिन ध्यान में रहना है, पूरे दिन अवेयरनेस में रहना है, मन को एक पॉजिटिव तरफ लगाए रहना है। हम जो काम कर रहे हो उस मन को वहीं पर उसी जगह लगाए रखना है, उसको कहीं दूसरी जगह जाने नहीं देना है। इसी को हम कहते हैं अवेयरनेस। और अवेयरनेस के माध्यम से हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शांतिपूर्ण सुनने के लिए। थैंक यू।
शांति। हम लोगों को इनकी बात अगर समझना हो तो ब्रेन में जो आत्मा बैठी हुई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और शरीर हमारा, हमारे आसपास की दुनिया, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। अंदर जैसा चलेगा बाहर वैसा होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो हमें अफसोस है कि उनको हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन डेढ़ घंटे में और तो कितना। तो हम अब निमंत्रण देते हैं मानेंद्र प्रताप सिंह जी को। आपका छोटा सा परिचय आपने मुझे भेजा है, उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक मिनट। डॉक्टर मानेंद्र प्रताप सिंह, आपको वहां शायद महेंद्र दिख रहा होगा, वो गलती से हो गया है। Is a distinguished academic and administrator with extensive experience in various roles. He served as the former member secretary of the Indian Council of Philosophical Research and in the Ministry of Human Resource Development earlier, now Ministry of Education, Government of India. Dr. Singh's academic journey includes being the principal of degree colleges in Uttar Pradesh and teaching a wide range of philosophy courses. His research interests span from Immanuel Kant to contemporary topics like interfaith dialogue and neuro-linguistic programming, another dimension actually. He has been recognized with awards and fellowships and has actively contributed to institution building and project management in the voluntary sector. I request him to come and throw light on the topic on hand. Respected Manendra Singh ji.
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित राजयोगिनी बहन अंबिका जी, राजयोगिनी बहन जयंती जी, डॉक्टर साहब सचान जी, भाई विनय पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज प्रातः मुझे एक शॉक मिला कि आपको सिर्फ 12 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है। हम लोग डॉक्टर साहब को भी इतना ही समय मिला था। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे और जितना समय हमारे परिचय में लगाया, मैं आपको अपना परिचय एक सेंटेंस में दे रहा हूं। मैं आजीवन दर्शन शास्त्र का विनम्र विद्यार्थी हूं, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं अपनी बात एक एनेक्डोट से शुरू करूंगा। मेरे एक मित्र सहपाठी, मेरे वर्षीय 3 लोग हमारे यूनिवर्सिटी से यहां आए हैं, लेकिन कोई भी समय मुझे सुनने के लिए नहीं है। घर की मुर्गी साग बराबर। एनेक्डोट यह है कि मेरे एक सहपाठी IAS में थे और वो सरकारी खर्चे पर 1 साल के लिए लंदन जाकर के MBA किए। उस समय मैं एक सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल था, तो जब आए तो मैंने कहा, भाई तुम साल भर में क्या सीख के आए हो हमको बताओ। और हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमारे जो टीचर्स थे वो एक ट्रेनिंग हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से दिए थे, विनय जी इसको अप्रिशिएट करेंगे, वो था प्रेसी लिखना। प्रेसी में ये होता है कि जो चीज आप 1000 वर्ड्स में कहें कहा लिखा हुआ है उसको आप 1/3 यानी 300 में कर देंगे, और जो बात 300 वर्ड्स में है उसको आप अगर फर्दर प्रेसी लिखना हुआ तो उसे आप 100 वर्ड में कर देंगे, फिर कहना हुआ और संक्षेपण कहेंगे तो उसको 30 वर्ड में कर देंगे। तो मैंने इसी टैक्टिक्स को याद दिलाया कि मुझे बताइए आप साल भर में क्या करके आए हैं, MBA की या डिग्री लेकर के आए हैं, वो भी सरकारी खर्चे पर। बाद में वो एयर इंडिया के CMD बने काफी दिनों बाद। तो भाई कहा कि अब मैं 5 मिनट में कैसे बता दूं आपको। एक तिहाई करते करते हमने कहा आपको अब मुझे 5 मिनट में बताना होगा। तो आप ताज्जुब करेंगे जितना सुसंगत और एक्यूरेट प्रेसी हमारे मित्र ने बताई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एमबीए कुछ नहीं होता, टाइम, स्पेस और रेपुटेशन का मैनेजमेंट होता है, दैट्स ऑल। आपके पास कितना टाइम है उसको मैनेज कर लीजिए, आपके पास कितना स्पेस है उसको मैनेज कर लीजिए, और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि रेपुटेशन का मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, आप कैसे सेल कर रहे हैं, कोई आइडिया? स्पिरिचुअलिज्म की सेल हो रही है, सभी लोग स्पिरिचुअलिज्म के बारे में अपने अपने ढंग से इसको प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। तो रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मैनेजमेंट कैसे हो इसके लिए टेक्नोलॉजी है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे डिफॉल्टर का स्टेटस। मैं कॉलेज प्रिंसिपल रहा तो लाइब्रेरी से जो किताब ले गया वो दोबारा वापस नहीं किया, और एक प्रोफेसर साहब का तो अच्छा खासा जीपीएफ कटा उस पे, क्योंकि जो अच्छे अच्छे लड़कों को उन्होंने किताबें दी थी किसी ने वापस नहीं किया। टेक्नोलॉजी ये है जो हमारे मित्र वहां से सीख करके आए थे कि डुप्लीकेट लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनेगा। मतलब अगर आप एक बार डिफॉल्टर का स्टेटस ले लिए तो फिर यू विल रिमेन डिफॉल्टर। कैसे? टेक्नोलॉजी से। हमारे कॉलेज से, लाइब्रेरी से बैंक को इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि भाई हियर इज द पर्सन, ही हैज नॉट डिपॉजिटेड हिज ऑनर्ड हिज वर्ड, और बैंकर से आपका रेड हो गया। फिर आपके गैस कनेक्शन वाले को, मार्केट को, जहां जहां भी आपका रिश्ता है सब धीरे 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 टेक्नोलॉजी वहां पर परकुलेट कर जाएगी। तो ये तो बुरे सेंस में कहा लेकिन पर्पज अच्छा है। ठीक वैसे ही चीज हम एक नई आइडिया दिए, आई एम सपोज टू गिव यू सम न्यू थिंग, ये ऐसा टॉपिक है रिसर्च करने का। रिसर्च, कई कई बार सर्च करना, तो साइंस, वी आर सपोज टू एक्सटेंड द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। 1750 के आसपास पूरी दुनिया में एक जैसा जीवन स्तर था, अमीर गरीब होते थे, किसी के पास ज्यादा भैंसे होती थी, किसी के पास ज्यादा खेती होती थी, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया गैर बराबरी शुरू हो गई, बहुत बड़ा अंतर आया। तो साइंस और स्पिरिचुअलिज्म की रिसर्चेस में अंतर है। कल मुझे इस बात का इल्म यहां पर हुआ था कि साइंस को लोगों ने ठीक से समझा था कि ऑब्जर्वेशन के बाद जो चीज रिपीट की जा सकती हो, एक ऑब्जर्व किया और एक थियरी निकली, हाइपोथेसिस निकला, उस थियरी को आप अगर रिपीट कर रहे हैं उसी कंडीशंस में तो वो एक लॉ या नियम बन जाएगा और साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक जर्नल में छप जाएगा, उस पर ग्रांट मिल जाएगी, उस पर काम होगा, उस पर चंद्रयान चला जाएगा, सब कुछ होगा। स्पिरिचुअलिज्म में यहां पर यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक, पर्सनल है, यू कांट रिपीट इट। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं तो हमारे यहां एक हंसने वाले फिलोसफर मिले हैं, एक रोने वाले मिले। तो जो रोने वाले थे उनका नाम था हेराक्लाइटस, ग्रीक फिलोसफर थे, वो रोते रहते थे। क्या रोना था साहब? कि लाइफ इज इन द फ्लक्स, जीवन बदल रहा है, यू कैन नॉट इंटर इन टू द रिवर ट्वाइस, हम एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि पानी बदल जाता है, कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में है, चेंज हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिज्म में आपको अपने एक्सपीरियंसेस को ऑथेंटिक बनाते हुए अपने तक रखना है। इसका कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। रिलीजन और पॉलिटिक्स में यही अंतर है, स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन में भी यही अंतर है। हम लोग लॉजिक में शब्दों के बहुत रिगरस यूज को महत्व देते हैं। से एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सेकुलर। आदमी सेकुलर नहीं होता, सेकुलरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। जैसे ये एक गजट है, ये दयालु या निर्दयी नहीं हो सकता, ये कठोर होगा या मुलायम होगा। इसी तरीके से जो स्टेट है, या तो वो थियोक्रेटिक होगी या सेकुलर होगी। आदमी जो है वो सेकुलर नहीं होता, ये गलत यूज है सेकुलरिज्म का। तो हम हर रिलीजन में सर्वधर्म संभाव नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। आई टेक दिस लिबर्टी टू यूज दिस टर्म टू करेक्ट दिस फिनोमेनन। हमारा जिस रिलीजन में हम पैदा हुए वो हमारा मात्र रिलीजन है, उसकी बराबरी दूसरों से नहीं की जा सकती। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट, हो गया सर? नो, 4 मिनट्स मोर, आई विल कंक्लूड दैट। सेकुलरिज्म को आप समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से भारत देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। रिलीजन पर्सनल चीज है, हर घर में एक पूजा गृह है, वहीं पूजा होती है। बाहर इसका तमाशा बनाने के लिए या किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस हैं और इनर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं। स्पिरिचुअलिज्म इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन एवर यू आर इन ट्रबल। इफ यू आर इन ट्रबल, आपको अपनी माँ तो याद आएगी कि दूसरे की माँ को याद करने जाएंगे आप? ईश्वर याद आता है या मां याद आती है अगर आप पेन में रहते हैं? तो एक बात जो नोट करने की है आज, वो ये है कि सर्वधर्म समभाव की जगह पर आज से आप सर्वधर्म सद्भाव की बात करें। गुडविल समभाव कैसे हो सकता है? I am not a competent authority to say even a lafz on Quran. I am not competent authority to say anything about Gita. जो competent authority है उनको बुला के आप interfaith dialogue कराइए। New dimensions की बात मुझसे expect की जा रही है, तो मैं 5 आपको new dimensions दे रहा हूं। 4 मिनट था, 1 मिनट गया, लेकिन मैं mention करके आपको ये बात छोड़ रहा हूं। नंबर 1, डॉक्ट्रिन ऑफ ह्यूमन डिस्टिनी, इस पर और शोध करने की जरूरत है। मैं प्रतापगढ़ यूपी में कुछ दिन पढ़ा हूं, वहां पर एक भेड़िए का बच्चा, सॉरी, आदमी के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया था। 10 साल बाद वो मिला और वो बुरी तरह से भेड़िया बन चुका था। तो मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट, वो भी 10 साल की जो है आपकी जो परवरिश है वो आपका पूरा पूरा करेक्टर फॉर्मेशन कर देती है। अब आप ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं पर्सनालिटी में। दैट इज डिस्टिनी, यू कांट चूज योर पेरेंट्स डिस्टिंक्ट, यू आर डिस्टिंक्ट टू बी बॉर्न इन सम फैमिली। तो इस पर और अधिक रिसर्च की जरूरत है। दूसरा, ला डॉक्ट्रिन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। देखिए, मेरी बात को ऐसे मत समझिए, आप तर्क कसौटी पर खरी उतरती है तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। अपरोक्षानुभूति, शंकराचार्य ने कहा वो दैट इज द टच स्टोन, साइंटिस्ट है यहां पर, लिटमस टेस्ट है वो। अगर आपको अपरोक्षानुभूति हो रही है तो वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कैसे होती है भाई? अनुभूति का विषय है ये तो, पर्सनल है। बहुत से लोगों को बहुत सी अनुभूतियां नहीं हुई होंगी, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिज्म का केस है। तीसरी डॉक्ट्रिन जो है, तो साइंटिफिक टेम्पर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंध भक्ति हम नहीं करेंगे जब तक यहां नहीं हमको, या हृदय में अगर स्थान नहीं मिल रहा है तब तक हम कोई बात, कोई व्यक्ति या कोई संस्था को हम नहीं माने। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है और सबसे सही है, सत्यम है वो, ध्रुव सत्य है, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिक पर्टिकुलर्स। यूनिक पर्टिकुलर्स का मतलब क्या हुआ कि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन 15 नवंबर 2022 को 8 अरब थी, 8 बिलियन, और 15 साल बाद 2037 में ये 9 अरब हो जाएगी। आप ताजुब करेंगे, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। यूनिक पर्टिकुलर्स हैं हम लोग, वी आर ऑल वंडर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। सब यूनिक हैं, किसी के चेहरे नहीं मिलते, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलती। अब नेचर इज सो प्रोफाउंड, क्या रिसर्च कर लेंगे आप थोड़ी देर के लिए? जाने कितने पॉपुलेशन लोग आए, जाए कितने अरब आए और कितने अरब आएंगे, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। ये विश्वास कहां से आया आपको? हो सकता है कोई ऐसा समय आ जाए जब सबके फिंगरप्रिंट्स मिलने लगे। तो साइंटिस्ट की लिमिटेशंस हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने किस तरीके से एक खोज के लिए कितना त्याग और बलिदान दिया है, ये आप गैलीलियो, आर्किमिडीज, ब्रूनो, इन सब का नाम लेकर के आप याद कर सकते हैं। ये सिर्फ तीन, दो और हैं, वो है एक इंटरफेथ डायलॉग कराइए, आपस में शांति, ब्रदरहुड मेंटेन रहेगा। हर रिलीजन के एक कुछ क्रक्स पॉइंट्स हैं। अभी तक हम हिंदुइज्म में बॉर्न हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो जब भी हमको कोई परेशानी होती है हनुमान जी के पास जाते हैं। क्यों? बचपन से जाते रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है, आज भी जाते हैं। तो ऐसे में जब भी आप कुछ करेंगे तो ब्रदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एक्सेप्ट करिए, डायलॉग कराइए, डिस्कशन कराइए। तो इसलिए एक एरिया तो इंटरफेथ डायलॉग का है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरा लास्ट सबमिशन है इस गैदरिंग को, वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये शब्द तो अभी आपके सेमिनार में नहीं आया, इस कॉन्फ्रेंस में, सॉरी, लेकिन उस तरह की बातें खूब हुई हैं। सबकॉन्शियस माइंड को चैलेंज करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना, सबकॉन्शियस माइंड। प्रार्थना आप करते हैं, कुछ नहीं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। आप जैसी प्रार्थना करेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह की चीजें और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो ये यही चार पांच बातें थीं जो हम और विस्तार से आप सबके साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन आज मॉर्निंग शॉक की वजह से मैंने इसका प्रेसी बनाया और समय के साथ में प्रेजेंट कर दिया। धन्यवाद।
ओम शांति। जो सूत्रात्मक बोलता है उसे हम ऋषि कहते हैं। आपने अपनी बड़ी बातों को भी अल्प में सुनाने का जो पुरुषार्थ किया है, उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद आपका। क्योंकि पतंजलि ने भी योग सूत्र लिखे, उसके ऊपर ग्रंथों के ग्रंथ लिखे गए, लेकिन फिर भी उसके सूत्र आज भी उतने ही क्रिप्टिक हैं। मुझे लगता है आपको जो वो पांच उन्होंने दिए हैं वो आपके मानस पटल पर छप गए होंगे। अब समय आया है गाइडेड मेडिटेशन का। हमारी सीनियर राजयोग टीचर मुजफ्फरनगर यूपी से आई हैं और आपकी विनम्रता देखिए, आपने सिर्फ इतना लिखा है कि वे पिछले 34 साल से इस सेवा में हैं और 34 सालों में उन्होंने कितना कुछ किया होगा वो उनकी वाणी से ही प्रकट होगा। उनके हमें जो मेडिटेशन कराने का जो प्रयोग करेंगी वो उसमें से ही प्रकट होगा, तो आपको अनुभूति द्वारा वो अपना परिचय दिलाना चाहेंगे। मैं निमंत्रण देता हूँ आदरणीय जयंती बहन को।
ओम शांति। मेडिटेशन के लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस सफलता पर नहीं पहुंच पाते जहां हम जाना चाहते हैं। तो एक बार हमारे सीनियर भाई साहब ने हमको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। जब हम गणित में भी देखते हैं तो जीरो के एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। तो मेडिटेशन में भी यही बात काम में आती है। जैसे कई बार हमारा योग नहीं लगता था तो उसमें उन्होंने हमें प्रैक्टिस कराई कि आप जीरो पर भी नहीं, चाहे जीरो से 0.1 ऊपर पॉजिटिव पे आइए, तो आपका उस सुपर पावर से, सुप्रीम सोल से बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाएगा और जो मेरी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है वो फिर से चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव में आना, जो हम अभी सुन ही रहे हैं परसों से, शांति, वो परमात्मा जो शांति का सागर है, थोड़ी शांति मेरे अंदर हो, थोड़ी सी। वो परमात्मा जो प्रेम का सागर है, जो प्रेम की दुनिया बनाता है, थोड़ा सा प्रेम मेरे अंदर हो, तभी मैं उससे उस प्रेम की शक्ति को धारण करके और उसी के जैसा मास्टर प्रेम का सागर बन सकती हूँ। दूसरा एक साइंस में लॉ है, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। घर में सभी करते हैं, किचन में सबको अनुभव होगा कि जब हम थोड़ी सी किशमिश पानी में भिगो देते हैं तो कुछ क्रिया होती है। और उस सब उसके अनुभवी हम ये हैं कि पानी जो है वो एक डाइल्यूट सिस्टम है और किशमिश जो है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो एक थ्योरी है ये, उसमें क्या होता है, कुछ समय बीतने पर जो डाइल्यूट सिस्टम है पानी, जो फीका था वो मीठा हो जाता है। तो जो किशमिश के मिठास के कण हैं वो पानी में आ गए और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों जो सिस्टम हैं वो सेम हो जाएंगे, उसका इक्विलिब्रियम सेम हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा कौन है उसको हम बहुत अच्छी तरह से महसूस करें, फील करें कि वो परमात्मा जो शांति का सागर है और मैं आत्मा अशांत हूँ या मेरी शांति बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर शांति आ जाए, वो परमात्मा पवित्रता का सागर है और मैं चाहती हूँ मेरे अंदर पवित्रता आ जाए, तो मुझे अपना और उसका कम्युनियन करना होगा, तभी यह संभव है। तो हम सभी चलते हैं एक सुंदर यात्रा पर। तो आप सभी सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को हम सीधा कर लें और हमारे हाथ में कुछ भी हो आप साइड रख दीजिए, बाकी सारे शरीर को आप ढीला छोड़ दीजिए। आप चाहे सहज हो तो आंखें खुली रखिए, नहीं तो आप अपनी आंखों को आधा बंद भी कर सकते हैं, या जैसे आप अपने आप को जिस स्थिति में रिलैक्स फील करें ऐसा ही रखिए। तो चलते हैं बहुत सुंदर यात्रा पर जो मेरी अंतर की यात्रा है, और आज इस यात्रा पर जाने के लिए मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, बहुत उमंगों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। ये इतनी सुंदर यात्रा पर जब मैं जा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर से भिन्न सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मैं वो लाइट हूँ, मैं वो सितारा हूँ। और इस भौतिक शरीर को छोड़कर, भूलकर, अपनी सूक्ष्म शक्तियों के साथ उस ब्रह्मांड में जा रही हो जहां शक्तियों का स्रोत, जिसमें ज्ञान गुण अपार भरे हुए हैं, वो मेरा पिता है। आज मैं आत्मा, मैं चमकता हुआ सितारा, अपने उस प्यारे पिता के समीप जा रहा हूं। मेरे ही समान वो प्रकाश पुंज है, उन्हें देखकर मेरा मन अति प्रसन्न है। उनकी शक्तियां चारों तरफ रश्मियों के रूप में फैल रही है और मैं आत्मा उनका बच्चा उनके समीप विराजमान हूं। उन पॉजिटिव वाइब्स को फील कर रहा हूं। मुझे महसूस हो रहा है वो ईश्वरीय शक्तियां मेरे ऊपर आ रही है, और मैं आत्मा आनंद से भर रही हूं। चाहे मैं परमात्मा से एक ही शक्ति या एक ही गुण को अनुभव करूं, वो प्रेम के सागर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। उनका निश्चल प्रेम मुझ आत्मा में शक्तियां भर रहा है। मेरी सभी कमियों को साफ कर रहा है। मुझे महसूस हो रहा है ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ है। उन प्रेम की रश्मियों में मैं आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूं। उस असीमित प्रेम को धारण कर वापस इस कर्म क्षेत्र पर त्रिकुटी के बीच में मैं प्रेम का सितारा चारों तरफ प्रेम के ही प्रकंपन फैला रहा हूं और महसूस कर रहा हूं इस संसार में मेरा सभी से चाहे मनुष्यात्माओं से जीव जंतुओं से प्रकृति से अथाह प्रेम है क्योंकि मैं उस प्रेम के सागर की संतान हूं। और एक सुंदर प्रेम की दुनिया का निर्माण हो रहा है ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।
दोस्तों, हमको एक दिशा देने का प्रयास किया गया है। एक छोटी सी काव्य पंक्ति के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और बहनों से निवेदन करूंगा कि आगंतुक हमारे मंचस्थ मेहमानों को मेमेंटो प्रदान किया जाए। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता। दूसरी लाइन है, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। मैं जो सोचता हूँ वो होता है। हमारे मेहमानों का स्वागत अभिवादन मेमेंटो देकर किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।